स्वीकार करें और जहां कोई स्वीकार कर लेता है, वो उसकी बात बड़ी अच्छी है, हम उसकी पीठ थपथपाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसका सम्मान करें। ब्राह्मणों का सम्मान जब तक करते रहेंगे, चाहे अपने भीतर हो चाहे दूसरे के भीतर हो, तब तक हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बना पाएंगे। हमें अपने भीतर की अच्छाइयों को ही नहीं, दूसरे के भीतर की अच्छाइयों को भी स्वीकार करना, उनकी प्रशंसा करना और पीठ थपथपाना होगी। पर सावधानी बात रखनी होगी कि अपने भीतर की बुराइयों की पीठ न थपथपा दें। हमारे साथ एक और मजा है, हमारे भीतर जो गलतियां हैं हम उनके लिए दूसरे से क्षमा मांग जाते हैं। हम कहीं कुछ गलत हो जाए तो हम अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे हमें क्षमा करते हैं, लेकिन दूसरे को अगर कुछ गलती करता है तो हमारा मन होता है कि उसे हम पनिश करें। बस इसको जरा सा चेंज कर लें, जब जब भी हम कहीं गलत हो जाए अपने को हम पनिश कर लें, और जब जब भी कोई दूसरा कहीं गलत हो जाए उसे हम क्षमा दान दे दें। देखिएगा फिर अपने जीवन को कैसे हम आसानी से ऊंचा उठा पाते हैं। यह बहुत सहसी बात है, लेकिन हमारे स्वभाव में जो चीज आ गई है उसको चेंज करना बहुत कठिन है। हैबिट इज द सेकंड नेचर, कोई भी आदत बन जाती है तो वो हमारा एक स्वभाव ही हो जाती है। हम लोगों को कितनी सारी आदतें हैं जिन आदतों के बारे में हम जानते हैं कि ये आदतें मेरे जीवन के लिए हानिकारक है, इसके बावजूद भी हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। सबसे पहला कदम अपने जीवन को अच्छा बनाने का यही है कि जो मेरे भीतर बुरी बातें हैं उन्हें मैं स्वीकार करना शुरू कर दूं। हाँ यहां मैं गलत हूं, हाँ यहां मैं बुरा हूं। हम दूसरे के सामने भी साहस करके ये कह सकें कि ये मेरे भीतर कमियां हैं, ये मेरे भीतर बुराइयां हैं, इनको मुझे दूर करना है। कोई अगर मेरी उन कमियों और बुराइयों को मुझे दिखाता है तो मुझे व्यथित नहीं होना चाहिए, नहीं उस व्यक्ति से दूर होना चाहिए, नहीं उस व्यक्ति को हमें करे शब्द या कि उसके अहित का विचार करना चाहिए, बल्कि उसे धन्यवाद देना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे मेरी कमियों से परिचित करा दिया, मैं स्वीकार करता हूं। कमियों को स्वीकार करना कमियों से मुक्त होने का पहला कदम है। मुझे एक अपने जीवन की घटना याद आती है, मैं सुनाया करता हूं हमेशा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपनी प्रशंसा उसमें कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि जहां कुछ अच्छा है वहां हम क्यों प्रशंसा करने से चूक जाते हैं, और जहां कुछ हमारे भीतर बुरा है उसे हम स्वीकार करने से क्यों बचना चाहते हैं। बस बात इतनी सी है। उन दिनों में पाठशाला में हम लोगों ने पाठशाला शुरू की थी, एक साथ 26 पाठशालाएं, 26 लोगों ने ऑलरेडी अपना टर्न देना शुरू किया था। 1976 के लगभग की बात है, छोटे बच्चों को लेकर के चिंता शुरू से हमारे मन में रही है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म को आगे ले जाएगी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ करा दें। इतना ही करा दें कि वे एक बहुत जिम्मेदार मार्ग पर चलने के लिए पैदा हुए हैं और वे उस जिम्मेदारी को समझें। पाठशाला में बच्चे लोग पढ़ा करते थे, 100 बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, और अचानक लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो जैसा बच्चों का एक कहना चाहिए मस्ती करने का, मजा करने का एक हैबिट होती है, आदत होती है, तो वैसे ही लाने की बच्चों ने विसी लगा दी। अब जबकि मंदिर है, हमने कभी भी बच्चों को मंदिर में ले जाकर ये रियलाइज नहीं कराया कि ये मंदिर है। अगर उनको ये रियलाइज हो जाता कि ये मंदिर, अभी तो हमें कोई रियलाइज नहीं हुआ कि ये मंदिर है, अगर ये रियलाइज हो जाएगा तो दूसरे से कड़ी बात करने का मन नहीं होगा, झगड़ा करने का मन नहीं होगा, यहां दूसरे को धक्का देने का अपना ईगो सेटिस्फाई करने का मन नहीं होगा। अपन तो भगवान के सामने भी अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेते, मंच पर आकर के भी ईगो सेटिस्फाई कर लेते, धर्म सभा के बीच में भी मैं आया हूं शिफल लेकर के आया कर रहा होगा प्रवचन, क्या जरूरत पड़ने वाला बैठे होंगे लोग उनको बता रहे इसके अंदर तो शिफल चढ़ाऊंगा आऊंगा सभी भीड़ को क्रॉस करके आऊंगा। ये चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको कहने की, ये डिसिप्लिन अपने आप करने वाला है, हमने ये नोटिस कर लिया है कि ये हमने बच्चों को कभी एहसास नहीं कराया। उन बच्चों को भी नहीं था एहसास कि ये मंदिर है, मंदिर में क्या करने का क्या नहीं करने का, उन्होंने विसिल बजा दी। अब दिखाई पड़ी। मैंने कुछ भी नहीं कहा। सबसे पहले जो बुढ़िया लोग थी उनको मैंने कहा कि तुम जाओ, क्योंकि आज के समय की बात तो नहीं जा सकता ना। पहले के समय में कम से कम अपने तो भरोसा है कि बुढ़िया लोग बेटी लोग मुझे हाथ डाल के विसल तो नहीं बनाएंगे। आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो सब तो विदा कर दिए। छोटी वाली बुढ़िया लोग हमसे भरा तो नहीं मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, नहीं करते होंगे। आज भी टिकट तो अभी भी हमारी भारतीय संस्कृति में है कि हम कुछ चीजें हैं जिनको कि नहीं करना पसंद करते हैं। बाय नेचर जो बच्चे थे वो बाकी बच्चे अब वो घबराए घबराए से थे कि कहीं कुछ लगता है कि अब गड़बड़ होगा। ये आदमी सीधा जान पड़ता है लेकिन है खतरनाक। ये क्या किया उन्होंने कि आधे लोगों को भेज दिए, आधे लोग बच्चे, और कह दिया कि दरवाजे बंद कर दो। अब तो दरवाजे बंद करके क्या करेंगे? दरवाजे बंद करवाने के पीछे मेरा उद्देश्य था। उसमें कांच तो लगे हुए थे खिड़कियों में, जो दरवाजे आधे दरवाजों के ऊपर, उनमें से बच्चे देखें, लेकिन इन बच्चों को यह एहसास हो कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है। उन बच्चों में से मैंने कहा कि जिन्होंने भी विसिल बजाई हो वो अपना हाथ ऊंचा कर दे, लेकिन जिसको कभी बचपन से ये संस्कार में डाले गए हो कि अपनी स्वीकार गलती स्वीकार कर लेना, वो सहसा कैसे अपनी गलती स्वीकार करेंगे, वो भी चार लोगों के सामने? बहुत मुश्किल है। हम तो पूरा जीवन गुजर देता है अपनी गलतियों के लिए कन्फेस करना, तो अलग चीज है, अपनी गलतियों को हम स्वीकार तक नहीं कर पाते। उन छोटे छोटे बच्चों ने कहा से वो आगे पाएगी भी तो घबरा गए कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि इसमें गलती हो मानने पर। गलती देखो तो गलती करने में शर्म नहीं आती, गलती को कहने में शर्म आती है। झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है, झूठ बोल चुकने के बाद अगर झूठ प्रकट हो जाती तो शर्म आती है। अरे झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए थी, गलती करने में शर्म आनी चाहिए थी। आपके शर्म की बात गलती करेगी तो उसे स्वीकार करना शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें उन्हें शुरू हो रही क्यों? उसका कारण एक और है कि जब जब उन्होंने गलती स्वीकार की उन्हें पनिशमेंट दिया गया, ये भी एक मुश्किल है। सहसा हम गलती इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि गलती स्वीकार करने के बाद किसी ने हमारी पीठ नहीं तक तकली व्यस्त, गलती स्वीकार करने के बाद हमें पनिश किया। मुझे उसके बीच में घटना याद आ गई, विदिशा में मैं था 1992 में। 5 साल के बेटे को लेकर के एक पिता मेरे पास आए, बहुत दुखी मन से उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात कहनी। थोड़ा सा और लोग पीछे हट गए। उन्होंने कहा आप सिर्फ इतने कहने हैं कि इस बेटे को मैंने आपके पास बहुत वर्षों से आता हूं, इसे संस्कार डाले हैं कि ये दुनिया से भले झूठ बोलेगा लेकिन मेरे से कभी झूठ नहीं। इसने आज तक 5 वर्ष की उम्र मेरे से कभी कोई झूठ नहीं कही, बल्कि किसी और से उसने झूठ बोला तो मेरे से आगे कह दिया कि मैंने उससे ये बात झूठी कही है, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज लेकिन इसने पहली बार मेरे से झूठ बोला, इस बात का मुझे बहुत दुख है। बताइए मैं क्या करूं, मैं पिता हूं, क्या कर सकता हूं? मैंने कहा आप जाइएगा, मैं बेटे से बात कर लूंगा। अकेले में मैंने बेटे से कहा कि बेटे तुमने झूठ बोला पिता से। हां बोला मैंने, झूठ तो बोला। कारण क्या था? कारण बहुत आपसे बता सकता हूं, पिता से नहीं बताया। कारण सिर्फ इतना था कि मैं कल सिर में दर्द होने की वजह से अपने स्कूल के जो गणित के प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करके नहीं ले गया था, हेडिंग बहुत था। मैंने टीचर को जाकर के वहां यही कहा, जब उन्होंने पूछा कि आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, तो हमने कहा कि हमें हेडिंग था तो हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने इतना सुनने के बाद और मुझे पीटा, मेरी गलती थी, मुझे पीटा जाए इसके लिए मैं तैयार था। लेकिन मेरे बाजू वाले लड़के ने जिसने कि एक भी सवाल हल नहीं किया था, उसने अपनी कॉपी जो की तरफ रख करके उसके पास जब गुरु जी ने पहुंच करके पूछा कि तुमने अपने सवाल हल कर लिए, उसने कहा कर लिए, और गुरु जी ने बिना देखे और आगे बढ़ गए। तब मेरे मन में भी आया कि काश मैंने भी झूठ बोल दिया होता तो मैं भी इस 4 लोगों के बीच पिटाई से बच जाता। ये चीज मेरे मन में आई, मैं घर वापस लौटा और मुझे फिर पहली बार ये लगा कि यदि मैं अपने पिटने की बात और अपने सवाल हल न करके ले जाने की वजह से पिटने की बात अपने पिता से कहूंगा तो हो सकता। कौन से भी झूठ बोला, पर एक जीवन में इस तरह से झूठ बोलने की आदत डेवलप हो गई। हम सबके जीवन में भी ऐसे डेवलप हुई होगी, सबके जीवन में अपनी सेफ्टी के लिए कितनी देर की सेफ्टी के लिए जरूर देंगे, जबकि हम झूठ बोलते हमेशा के लिए अनसेफ हो गए, ये समझ में आता। वो जो थोड़ी देर के लिए हम झूठ बोलकर के सेफ हो गए हैं, वो सेफ्टी मालूम पड़ती है। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने हमारे सच बोलने पर सम्मान ही नहीं किया। अपने असम्मान से तो डरता ही है। उन बच्चों के मन में भी यही आया कि अब तो लगता है कि हम हमारी पिटाई होगी, तो होने दो, हम तो सच नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे तो उनसे सच बुलवाना था। मैंने कहा ठीक है, सब अपनी जगह खड़े हो जाओ, मैं एक एक के पास आऊंगा मेरी तरफ देख करके, और सिर्फ ये कहना मैंने विसिल नहीं बजाई, सिर्फ इतना ही, लेकिन मेरी तरफ देख करके बोलना। पहले वाले बच्चे के सामने पहुंचा तो मेरी तरफ आंख ही नहीं उठा रहा है, उसकी आंख भर आई है, टप टप आंसू गिर रहे हैं, धीरे से कह रहे हैं कि मैंने नहीं बजाई। मैं दूसरे बच्चे के पास पहुंचा, उसकी भी यही हालत है। मैं तीसरे तक पहुंचू, इसके पहले 25 बच्चों में से 5 बच्चों के हाथ ऊपर उठ गए कि हमने बजाई है। सिर नीचे है, हाथ ऊपर उठा हुआ है, स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे सामना नहीं कर सकते थे। इतना रिस्पेक्ट था उनके मन में, इतना विश्वास था। मैंने बाकी को विदा किया कि जाओ सर, ये 5 बच्चे जिन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी कि हमने बचाई है विसिल, अब वे और डर रहे हैं कि अब तो कुछ और होगा। हम सब इस तरह से सच जीवन जीने के बाद भी भयभीत होते हैं। आज जितना ईमानदारी से जीने वाला भयभीत है, बेईमानी से जीने वाला उतनी निश्चिंतता से जीवन जी रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? हमने बेईमानी की पीठ तक चढ़ाई है और ईमानदारी को कभी साथ नहीं दिया। ये हमारी अपनी गलती है, इसकी वजह से बेईमानी फुल फूल रही है, ईमानदारी संकुचित और छोटे से दायरे में सीमित है, चाहे हमारे भीतर हो, चाहे हमारे आस पड़ोस के वातावरण में हो। अब मैंने उन 5 बच्चों को जो कि कांप रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, मैंने कहा डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी पीठ थपथपाता हूं इस बात के लिए कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। बेटे लेकिन ये मंदिर है, क्या हमें यहां विसिल बजाना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी शुरुआत, तुमने अपनी गलती स्वीकार की और कभी नहीं बजाना चाहिए ये भी स्वीकार कर रहे। सामने गोमी जी की फोटो लगी थी, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, मैं कौन होता हूं जो महान आत्मा है उनके सामने हाथ जोड़ करके सिर्फ इतना ही कहो कि आगे से ये मंदिर है, मैं इसकी गरिमा बनाए रखूंगा, यहां पर कभी ऐसी कोई चीज जो कि इसकी गरिमा को नष्ट करे मैं नहीं करूंगा। उन बच्चों ने हाथ जोड़ के इतना ही कहा और विदा हुई, बच्चे चले गए। उसके बाद कितनी बार तो कक्षा में, कितनी बार तो बिजली गई है और कितनी बार ऐसे मौके आए, लेकिन कभी भी किसी बच्चे ने विसिल नहीं बजाई। लोग आकर के लालटेन डर जाते थे कि अरे अरे अंधेरे में नीच पा रहे हैं सर, आप लालटेन डरना, मैंने कहा नहीं, आप भीतर एक बार उजाला हो जाएगा तो बाहर का अंधेरा उस उजाले को नष्ट नहीं कर पाएगा। ये अपने जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकार करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का पहला कदम है। और दूसरी चीज, क्या कभी हम अपने आप को अच्छा बनाने के साथ साथ दूसरे के भी अच्छे का विचार करते हैं क्या? ये दूसरा कदम है। हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है। क्या मैं कभी दूसरे के जीवन के अच्छा बनाने में कारण बनता हूं, दूसरे की मदद करता हूं, दूसरा अपने जीवन को अच्छा बनाए इसके लिए मैं उसकी सहायता करता हूं? ये शायद ये भी हमसे नहीं हो पाता। दूसरा बेईमानी करे तो भी हम पसंद नहीं करते, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, सामने सामने से तो उसकी प्रशंसा जरूर करते हैं, उसका साथ भी देते हैं, और जो ईमानदार है उसकी पीठ पीछे प्रशंसा करते हैं, सामने सामने तो हम उससे कतराते हैं। ये आदत भी छोड़ना पड़ेगी। अब ईमानदार के साथ खड़े होने का साहस, उसकी ईमानदारी का इजाफा करने के लिए उसकी मदद, ये हमें अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। और बेईमान व्यक्ति की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका समर्थन करना छोड़ दें, फिर देखेंगे वो कितने दिन तक अपनी बेईमानी को आगे ले जाता है। इसके लिए लेकिन बहुत मॉरल स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत नैतिक बल चाहिए, अपने भीतर की बेईमानियों को निकालने वाला भी दूसरा। दूसरे की बेईमानी में समर्थन नहीं करेगा, वरना तो सब धोखा देने वाले धोखा देने में समझ से कि वो जो दे रहे हैं वो धोखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने वाला बुद्धू है, धोखा खाने वाला धोखा खा रहे समझ से कि वो जो खा रहे हैं वो धोखा नहीं है। धोखा धोखा होने के बाद भी फायदा है, दोनों लोगों में दोनों का काम चल रहा है, ये हो रहा है ना। आप भी वैसे कर रहे हैं, मैं भी वैसे कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपका समर्थन करूं, आप मेरा करें, आप दोनों का काम चले, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी, चलना मुश्किल हो जाएगा। ये आदत बदलनी पड़ेगी। कैसा लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है ना आज, थोड़ी मुश्किल तो खड़ी करूंगा। आपने मुझे यहां पर रोक रखा है, गलती करी आपने, ऐसी मुश्किलें तो आपको बात आएंगे। और एक बार अगर जीवन में लिखने लगे कि हां सचमुच इन मुश्किलों का मुझे ही सामना करना है, मुश्किल एक क्षण आसान हो जाएगी, वहां ज्यादा कठिन नहीं है। एक मां जिसके कि बेटा नहीं था, वो दादाजी के पास गई, कहा कि मेरा बेटा हो, प्रार्थना कर दीजिएगा भगवान से, मैं तो रोज प्रार्थना करती हूं, दादाजी आप भी प्रार्थना कर दीजिएगा, आप भगवान के ज्यादा निकट हैं, आपकी प्रार्थना जरा ज्यादा वजनदार रहेगी, आप भी मेरी तरफ से प्रार्थना कर दीजिए। बाबाजी ने कहा अच्छी बात, मैं तुम्हारे लिए बेटे के प्राप्ति के लिए भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा, तुम बैठो। बैठ गई वो वहां बाहर भगवान में। अब बाबाजी के पास में रखे थे थोड़े से चने, अब जितनी देर में प्रार्थना करेंगे उतनी देर ये क्या करेगी। बाबाजी ने कहा लो मां तुम तब तक चने खाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, ठीक। अब उस मां ने चने खाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही चने खाना शुरू किए आस पास के बच्चे बिल्कुल देख ही रहे थे, सबने घेर लिया, हमको भी चना दे दो, हमको भी चना दे दो। वो जिस तरफ से बच्चे उसको कहते चना दे दो, उसके इस तरफ मुंह कर लेती फिर खाना रखती, किसी बच्चे को उसने चना नहीं दिए, मुंह पीछे करके और वहां से उठ करके दूसरी जगह बैठ करके खाने लगी, और सारे चने खा के पानी पी करके फिर बाबाजी के पास आई। क्या बाबाजी आपने प्रार्थना कर दी? मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। क्यों? तुम जब और किसी के बच्चों को प्यार नहीं दे सकती तो तुम अपने बच्चे को क्या प्यार करोगे, इसलिए तुम्हें बच्चा नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, तुम जब तक दूसरे की अच्छाइयों को सम्मान नहीं करोगे अपने जीवन में भी तुम्हारी अच्छाई प्रकट नहीं होगी। जब तक बेईमानी का समर्थन करते रहेंगे तब तक हम स्वयं बेईमानी की तरफ भी चले जाते रहेंगे। बहुत सीधी सीधी सी चीज है। मैं बच्चों को सुनाया करता हूं बापू के जीवन की घटना किसी संदर्भ में, जब जब भी स्कूलों में से बाहर करते हुए रहता हूं तो स्कूल में रुकता हूं, वहां सब बच्चों को कहानी सुनाता हूं। बापू ने एक फैमिली को टाइम दिया मिलने का, वो फिल्म भी 5 मिनट पहले अपने बापू से मिली, क्योंकि बहुत पंचुअल है बापू, पर उतने 5 मिनट में तो बापू अपने भोजन करने बैठे थे। जहां वो लोग बापू से मिलने बैठे थे वहां से जहां बापू भोजन करने बैठे थे वो सब साफ साफ दिखता था। छोटा सा बेटा उस फैमिली के साथ में था, मां उसको समझा के रही थी कि बापू बहुत प्यारे हैं, बच्चों को बहुत प्यार करते और बहुत अच्छे हैं। वो बच्चा बार बार बापू को देख करके कह रहा था कि ये बापू है तब तो बहुत गंदे हैं। अम्मा कह रही थी कि चुप रहा तो बापू सुनेंगे, पर वो तो जोर से बोल रहा था कि बापू तो गंदे हैं, तुम कह रहे थे कि अच्छे हैं पर बापू अच्छे नहीं हैं, गंदे हैं। बापू ने सुन लिया, मुस्कुरा दिए, वो बाहर आकर के बोले बेटे के सिर पर हाथ रख के कि अच्छा मैं गंदा हूं तो बताओ कि मैं क्या गंदा। तो बोलते हैं आप इसलिए गंदे हैं क्योंकि जब हमारे घर में कोई खाने की चीज आती है और हम अकेले अकेले खाते हैं तो मां कहती है कि तुम बहुत गंदे हो। आप भी तो ऐसा ही कर रहे थे, आप भी अकेले अकेले खा रहे थे, हम लोग बाहर बैठे थे। मतलब क्या हुआ, दूसरे का हम ध्यान ही नहीं रखते, दूसरे भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाह रहा है और हम उसके जीवन में अच्छाइयों में कभी सहयोग, हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाए, ठीक है, लेकिन दूसरे को अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगा तो उसके बीच भी नहीं तब बना सकते, उसका कोई सहयोग भी नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन में थोड़ी सी चीज आ जाए तो फिर देखिएगा कि हमारे जीवन क्या होता। और थिंक बिग, तीसरे नंबर का स्टेप है।
दूसरे की जीत में अपनी जीत मानना ये तो सबसे ज्यादा कठिन है। अभी अगर एक ठो मैं कह दूं कि कोई आए हुए हैं विशेष व्यक्ति हैं उनका अपन को यहां पर सम्मान करना है उनको बुलाया जाएगा तो सम्मान के लिए जैसे ही खड़े होंगे बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा अपमान हो गया। मैं देखो दूसरे के सम्मान में हमें अपना अपमान करना पड़ता है जबकि होना यह चाहिए था कि मेरे साधन का सम्मान यानी मेरा सम्मान मेरे धर्म का सम्मान यानी मेरा सम्मान। ये चीज हमारे भीतर अभी तक आ नहीं पाई किसी की भी अच्छाई का हम सम्मान हो तो देखें तो जितनी अच्छाई हमारे भीतर है हम मानो कि हम सबका सम्मान हुआ है लेकिन हम दुखी हो जाते हैं व्यथित हो जाते हैं इस बात की जरूरत में रहते हैं इस बात की कोशिश में रहते हैं कि आप सम्मान होना चाहिए ये इस व्यक्ति को जिसका हुआ है मैं जानता हूं उसको कितना बीमार है मैं तो उससे दूर ही रहता हूं ऐसे लोगों का सम्मान होता है यहां पर देख लिया हमने सब पक्षपात है यहां पर हम तो सोच रहे थे कि महाराज जी के पास पक्षपात नहीं होता है देख लिया हमने यहां भी सब यही होता है चलो अब भी नहीं आएंगे डिसीजन लेने ऐसे ऐसे दूसरे के आगे बढ़ते कहते जरूर हैं कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं लेकिन दूसरे के गुणों को सहन कर पाना बहुत कठिन है और प्रशंसा कर पाना तो बहुत कठिन है और प्रशंसा हो रही है तो स्वयं हर्षित होना और बड़ा कठिन है दूसरे की प्रशंसा में हर्षित होना ये तो महापुरुषों के ही बूते की बात है वरना तो हम दूसरे की प्रशंसा सुन करके और व्यथित हो जाते हैं उसी चीज को जिस चीज के लिए उसकी प्रशंसा हो रही है उसको अपने भीतर कि जिस बात के लिए प्रशंसा की जा रही है मैं उस अपने भीतर उस क्वालिटी को ध्यान रखता हूं जिस अच्छाई के लिए दूसरे का सम्मान हुआ है मैं भी वैसा ही अच्छा बनने की कोशिश करूं। इसके लिए मैं एक छोटी सी घटना आपको सुना तो शायद समझ में आएगा वैसे तो सब बात समझ में आती है मुझे मालूम पड़ गया हाँ लेकिन अब यह है कि ऊपर ऊपर से समझ में आती है जिस दिन भीतर से समझ में आ जाएगी उस दिन चेहरा कुछ और होगा उस दिन जीवन कुछ और होगा अपन को तो इंतजार उस चीज का है कि ठीक है अभी तो बहुत बाहर से समझ में आई है किस दिन सचमुच में भीतर से समझ में आ जाए तो हमारे लाइफ में चेंज हो जाए हम तो सिर्फ इसी आशा से अपन बैठते हैं रोज बैठते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं समझते हैं कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए कहाँ कहाँ हम क्या कर सकते हैं इसके लिए बैठते हैं तो क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति मर गया अब वो मर करके और पहुंचा वो स्वर्ग में तो वहां पर उसका रजिस्टर रखा हुआ था ऐसा रहता नहीं है कहानी में रहता है रजिस्टर रखा हुआ था उसमें एक व्यक्ति खड़ा था उसने नाम पूछा नाम उसमें उसका मिल गया उसके सामने लिखा था कितने पाप कितने पुण्य अब देखा जितने पाप उतने ही पुण्य जरा भी अब एक भी का फर्क नहीं है तो उस किससे कहा कि सुनो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है नरक में पसंद करोगे जाना कि स्वर्ग में उसने कहा कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे डिसीजन ले जो ऑप्शन है तो दोनों चीजें दिखाओ उसने कहा कि ठीक है आप दोनों देख लो फिर उसके बाद तो उसके लिए कहा रहे हैं आपको सबसे पहले उसने कहा कि मैं दिखाओ तो वहां पहुंचे एक बहुत बड़ा हॉल था बहुत लाइटिंग थी उसमें जगमग जगमग सब तरफ लगी हुई थी जैसे कि आज शादी से पहले पंडाल बनाए जाते हैं जिनमें जगमग जगमग लाइट लगी रहती है भले ही पूरे जीवन में अंधेरा फैला रहे लेकिन उस दिन तो कम से कम लाइट जलनी ही चाहिए भले ही कितने जीवों की हिंसा करके मेरे जीवन में लेकिन मुझे तो अपने ध्यान में रोशनी से मतलब है जीवों के जीवन में अंधेरा है तो फैलता है दूसरे का परस्पर का रोग होना बहुत कठिन है अगर ये आ जाए तो जीवन हमारा बहुत ऊंचा हो सकता है बहुत अच्छा बन सकता है कहीं नहीं जाना है किसी के चरणों में नहीं जाना अपने आप हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं और वहां देखा तो टेबल लगी हुई है और हम टेबलों पर खाने खाने की सामग्री रखी है, बहुत बढ़िया बढ़िया सामग्री रखी है, दोनों तरफ टेबल रखी है, शायद वे लोग भी ब्रिटिश प्रणाली से प्रभावित होंगे, उन्होंने शायद होटल मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह पढ़ा होगा, बुफे बुफेट सिस्टम उनको मालूम होंगे, भोजन की ये दो पद्धतियां ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब्त की गई, क्योंकि उनके यहां पर कोर्स नहीं होगा, कोई था ही नहीं,
सहनशीलता कम हो गई है,
शारीरिक रूप से घटना को सहनशील होना चाहिए, मानसिक रूप से सहनशीलता कम कैसे होगी? जैसी किसी ने कोई बात कह दी हम फौरन बुरा मान जाते, जब भी हम दूसरे की बात नहीं सहन कर पाते, दूसरे से अपेक्षा करते कि वो हमारी सब बातें सहन करें, लेकिन दूसरे की कोई बात मेरे को सहन नहीं। और आप देख रहे हैं जरा सा माता पिता अपने बेटे को कुछ कह दें तो बेटा तैयार है घर छोड़ने को माता पिता को, या कि अपने जीवन को नहीं छोड़ने तैयार है। जरा सी असफलता उसको प्राप्त होती है क्योंकि उसे तो सिर्फ यही कारण है कि पूरा कहीं असफल नहीं होगा, हमेशा सफल ही होना है। और जहां कहीं असफल होते हैं तो अपने जीवन को ही नष्ट करने का मन होने लगता है, असफलता को हम सही नहीं कर सकते। जबकि ध्यान रखना चाहिए सफल वही होता है जिनमें असफलता का स्वाद चखा है, जो जितना असफल होता है वो एक बार इतनी बड़ी सफलता हासिल करता है कि उसकी सारी असफलताएं और एक किनारे रखी हो जाती वो सफल हो जाता है। और जो जीवन भर सफल रहता है कभी एक आध बार असफल हो तो सारी सफलताएं व्यर्थ हो जाती और अपना जीवन को नष्ट कर लेता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो सफल है वही सफल है, जो असफल है तो भी सफल हो नहीं पाएगा, वो भी सफल हो सकता है। इसलिए हमारे मन में ये सहनशीलता होनी चाहिए। लेकिन देखना में आ रहा है उस पर हमें थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम शारीरिक और मानसिक रूप से और कष्ट शास्त्री नहीं हो पा रहे हैं। हमें बचपन से ये चीज ठीकनी चाहिए, हमें बहुत कम सुख सुविधा के साधनों में अपने जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। होते हुए भी मैं उनका उपयोग नहीं करूं, देखूं कि जिनके पास वो नहीं होगा वे कैसे जीते होंगे, करके देखें है मेरे पास। लेकिन अभी एक ग्रुप मेरे से बोलती कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से क्या होगा, एक तरफ आप पढ़ने वाले बच्चों की पीठ थपथपाते हैं, फिर अभी हमसे कह रहे हैं कि आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं, उससे ये कहते हैं कि ज्यादा पढ़ाई से क्या करना, आपने जो अपने को सर्विस करना ही नहीं है तो ज्यादा पढ़ाई क्या करना, माता पिता सर्विस तो 80% माता पिता जो है उन्हें तो सर्विस कराना पसंद है, बताइए कहते हैं क्या भविष्य सुरक्षित, ये सब बातें हैं, आपने पहले से उसका भविष्य असुरक्षित मान लिया कि कोई जरूरत पड़ रही है, नहीं पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मुझे कोई जॉब करना है, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई इसलिए है कि मेरा ज्ञान विकसित हो, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकूं। ये बहुत बड़ा जॉब है, छोटा मोटा जॉब नहीं है, अपनी फैमिली में अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना, करोड़ों रुपये भी खर्च करके आप अपने एक बेटे को और संस्कारित नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑफिस में बैठ करके आप सर्विस कर सकते हैं, आप 50,000 रुपये सैलरी पा सकते हैं, लेकिन आप अपने बेटे को छोटे से पाल को उसके बड़ा करके संस्कार न बना दें, उसके लिए रोज का पैसा जोड़ लें तो करोड़ों रुपये की संपत्ति आपको रोज मिलनी चाहिए। ये इतना बड़ा जॉब है, इसकी इतनी बड़ी सैलरी है। तो मैंने उसको सिर्फ यही कहा कि बी तेरे को करना है तो कर, लेकिन बी करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि करके दिन जो बेटा तुम्हारा हो वो गर्व से कह सके कि मेरी मां इंजीनियरिंग पास है लेकिन मेरी पूरी पूरी संस्कार बनाने के लिए और सेवा करती रहती है, मेरा पूरा ध्यान रखती है, मेरी पूरी केयर करती है, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए पूरा समय देती है। इतनी बढ़ाई पढ़ाई करने का सिर्फ उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम कहीं किसी ऑफिस में पैर हिलाते हुए किसी से हाथ बस बोलते हुए वतन तख देख करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे, घर आकर के लिए वही तू तुम्हारी नई भाषा सीख जाएंगे, फिर प्यार और करुणता ये दो क्वालिटीज चली जाती हैं, बहुत कम लोग हैं जो उसको मेंटेन कर सके, बहुत कम लोग हैं जो भी ऑफिस में चले जाने के बाद अपनी इस क्वालिटी को बनाए रख सके, अपनी संवेदनशीलता को अपनी करुणता को बरकरार रख सके। ये खुली आंख से हमें ये विचार करना पड़ेगा, इसलिए शायद जनों में अभी ये चीज आई नहीं है, हम बेहतर लोग नहीं है। ध्यान रखना हम आज भी बहुत समृद्ध हैं अपनी क्वालिटीज को लेकर के, इसलिए हम पढ़ाई के प्रति बहुत सजग हैं, लेकिन उस पढ़ाई का अंतिम रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारे जीवन संस्कारवान हो, हमारे अपनी पीढ़ी भी संस्कारित हो, ये सहनशीलता हमारे भीतर है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम इतने सहनशील हैं कि हमें 4 पैसे की नौकरी नहीं मिली है तो हम दुखित नहीं है। ये मानसिक रूप रूप से सहनशीलता हमारे भीतर आनी चाहिए, धैर्य हमारे भीतर आना चाहिए। हमारी बात आपको वैसे भाग कम लोगों को अच्छी लगती है, मुझे मालूम है 10% लोग पसंद करते हैं, लेकिन क्या करें, उन 10% के लिए भी तो मुझे कहना पड़ेगा। 90% लोग तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा है, आप तो थोड़ी देर हम हफ्ते भर में मिलते हैं आपके पास आना, थोड़ा एंटरटेन भी करवाया करिएगा, है ना। आपके प्रवचन में एंटरटेन ही नहीं होता क्या, चुपचाप चुपचाप आप तो ऐसा कर देते हैं कि आंसू भी नहीं निकल पाते और रोने का बहुत मन करता है। अपने जीवन के बारे में सोच करके कभी एक समय दिन भर में तो निकालना ही चाहिए कि जो जो हम करते हैं उसका अपना इतना तेजाबी परीक्षण करें कि जिससे मालूम पड़ जाए कि हम सचमुच हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं, किससे कहीं जाकर के कि हमें जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो बहुत आसानी से कर रहे हैं, किससे जाकर के कहें, अपने आप से ही कहना चाहिए। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, शायद सहिष्णुता और सहनशीलता का पाठ हमारे जीवन में आ सके, और बस बात पूरी करते हैं। एक बाबा जी नाव में बैठ करके नदी में उस पार उतर रहे थे। अब क्या हुआ, नव युवक भी थे, उनमें संस्कार उतने नहीं डाले गए होंगे, उनकी भी क्या गलती, संस्कार डालने वाले ने ध्यान नहीं दिया कि हमें दूसरे की सज्जनता की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अपनी सज्जनता को नहीं भूलना चाहिए, है ना। ये पाठ हमें कहां पढ़ाया जाता है, दूसरा अगर हमसे दुर्जनता का व्यवहार करे तो हमें भी उससे दुर्जनता का व्यवहार करना चाहिए, घर आने में बात करते हैं तो आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिखाया नहीं जाता। एक फर्क है, ये पशु जगत की बात नहीं है, ये मनुष्य जीवन की बात नहीं है। मनुष्य जीवन में तो दुर्जन के प्रति भी जो अच्छा व्यवहार करे वो सज्जनता सिखाई जाती, इतनी सहिष्णुता सिखाई जाती, इतना माना, इतनी नैतिकता हमारे भीतर होती है। वो तो साधु जी थे, सज्जन पुरुष थे, लेकिन उन सबके भीतर उनके साथ हंसी मजाक करने का मन हुआ और उन्होंने साधु बाबा जी की हंसी उड़ाना शुरू कर दी। हमने आज तक किया क्या, हमने आज तक सज्जनता की हंसी ही तो उड़ाई है, हमारे अंदर कहां है इतनी सहनशीलता आज कि जहां सज्जनता दिखाई पड़े वहां हमें चैलेंज मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति सज्जन बन गया मैं सज्जन नहीं बन पाया, इसके चलते एक सर्क मैगनीज नहीं है, बहुत नए वैज्ञानिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है इस चीज का कि दूसरे की सज्जनता चुननी लगती है, क्या ये कैसे सज्जन हो गए, मेरी दुर्जनता मुझे खाई जाती है, हाँ दूसरे की सज्जनता चैलेंज बन जाती है कि हम दुर्जन क्यों है, इसलिए फिर हम अपनी दुर्जनता को प्रकट करने लगते हैं उस सज्जन को टॉर्चर करके। बहुत सावधानी रखें, क्या हुआ, उन्होंने उनके साथ हंसी मजाक करनी शुरू कर दी, उनके साथ धीरे धीरे करके और इतना अधिक मजाक शुरू किया कि उनकी हंसी उड़ाना शुरू कर दी, वो फिर भी शांत है, मुस्कुरा रहे हैं, उनकी सज्जनता ऐसी नहीं कि वे सहन करें। हाँ थोड़ी देर के बाद तो जब ज्यादा अति हुई कि उसमें से एक बच्चे ने तो अपने पैर के जूते उठा करके और उनके सिर पर रख दिया, दूसरे ने उनके ऊपर थूक दिया, और तीसरे ने तो कुछ और अपवित्र वस्तु उनके ऊपर डालनी चाहिए इसके पहले ही नाव डगमगाई और आवाज आई कि बाबाजी सबको बना सकता हूं। कैसी आकाशवाणी हुई, सज्जनता जितनी अधिक सहनशीलता से युक्त होती है उतना उसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। साधु बाबा जी की सज्जनता सहनशीलता के साथ थी, इतना ऊंचाई पर जीवन उठ गया था कि लोग मदद करना तैयार थे, देवता भी मदद करना तैयार थे, देवता और कोई नहीं है, वे हैं जो कि अच्छाइयों का समर्थन करने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जो हमारे आसपास ही होते हैं देवता की तरह, जो कभी किसी की सज्जनता पर आज आने से पहले उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनकर के बाबा जी को डिसीजन लेना था क्या करें देना, लेकिन बाबा जी क्या बोले, ये तो देवताओं की भाषा नहीं रखते जो ऐसा कह रहे हो कि अगर आप कहें तो मेरा वर दो, अगर तुम्हें बाकी परखना है तो इन सबकी बुद्धि पर दो, ना परखने से कुछ नहीं होगा। सहिष्णुता और सज्जनता इस चरण तक पहुंच सकती है कि जब कहीं कोई दुर्जन को दिखाई पड़ती है, कोई बुराई दिखाई पड़ती है, तो उसे हम सहन कर लेते हैं और नहीं हम उस व्यक्ति को उस बुराई से मुक्त करने के लिए इच्छुक हैं। हम अन्याय को सहन करते हैं लेकिन अन्याय से मुक्त होने के लिए, हम दूसरे के साथ अन्याय नहीं करते हैं लेकिन दूसरे के अन्याय को सहन करते हैं सिर्फ इसलिए कि उसे हम अन्याय से मुक्त कर सकें। ये भी हमारा सोच है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। आज भी हमारे पास अपने जीवन को अच्छा बनाने की बहुत अच्छी बातें हैं, उन बातों से हम चाहें तो लाभ लेकर के और इन सब बातों पर विचार करके जो जिससे जितना हो सके 100% तो कोई नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 1% दिशा में 1% ये तो हम कर ही सकते हैं। तो हम इतना क्यों नहीं शुरू करें और आज ही से शुरू करें कि इन सब बातों में से कोई एक बात, कोई एक आदमी अधूरी ही बात जो मेरे जीवन में मैं कर सकता हूं अपने जीवन को अच्छा बनाने की, वो हम शुरू करें और फिर देखें कि कैसे हमारे जीवन में अच्छाइयां बढ़ती चली जाती और हमारे आसपास का परिवेश भी बहुत सुखद और बहुत जान पड़ेगा। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन अच्छा बने, आज फिर एक बार अपन मनोकामना करते हैं इस भावना के साथ कि हमें ऐसी सदबुद्धि है कि हम जल्दी से अपने जीवन को अच्छा बनाने की बातों पर विचार करके अपना जीवन अच्छा बना सकें। Oh,
मुसलमान पर जान।